हरे कृष्णा। तो शुरू करें, सब लोग रेडी हैं क्या? एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो राधा रानी के जो माताजी की माताजी हैं, राधा रानी की माताजी का नाम क्या है, उनकी माताजी का नाम क्या है, मुखारा देवी। उनके नाना का नाम क्या है, इंदुसेन। इंदुसेन और मुखारा देवी के द्वारा कीर्तिदा का जन्म हुआ, और कीर्तिदा को दो भाई और दो बहन थे। तो मुखाराई नाम का एक गांव है जो राधा रानी का जो राधा कुंड है गोवर्धन में, उससे एक दो किलोमीटर दूर है। तो मुखारा देवी भी बहुत वृद्धा हो गई थी और उनकी पुत्री कीर्ति भी काफी वृद्धा हो गई थी, जब तक उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तो मुखारा देवी भी चिंतित थी कि हमें कभी पोती होगी या पोता होगा। तो जब राधा रानी का जन्म हुआ, ये खबर पता चला उनको, तो मुखारा देवी इतनी खुश हो गई कि वो भाव विभोरता में क्या किया, इतनी वृद्ध अवस्था में जो माताजी है वो अपने घर के बाहर आई और आंगन में जो बैलगाड़ी थी ना, बैलगाड़ियां बहुत सारी थी, बैलगाड़ी के बहुत पहिए भी पड़े हुए थे, बैल भी बैठे हुए हैं, गाय भी बैठे हुई है, तो उसमें गई और एक बैलगाड़ी का पहिया ऐसा उठा लिया उसने। सोच सकते हैं आप में से कितने लोग बैलगाड़ी का पहिया उठा सकते हैं, इतना भारी होता है वो। वो बुढ़िया ने उठा लिया और उसको गोल 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 घुमाया ऐसे चक्र की तरह। उसके बाद में घी से बने हुए जो दीपक है प्रज्वलित, वो सब आरियों पर रखे उसके, मतलब ऐसे पूरा डेकोरेशन हुआ, और फिर उसको गोल 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 घुमाया और नृत्य किया। उसके उत्साह को और अद्भुत को नृत्य को देखकर सब गोपियां बहुत प्रेरित हो गई, उन्होंने भी सब बैल की गाड़ी के चक्के उठाए। समाप्त हो गए तो बैल की गाड़ी के निकाल के गोल गोल घुमाए। तो उस नृत्य का नाम है चरकुला नृत्य। क्या नाम है उसका, चरकुला नृत्य। तो वो नृत्य जो है वो आज भी ब्रज में बहुत फेमस है, और ब्रज की एक विशेषता है कि जैसे हर साल में कंस का मेला निकलता है, कंस को एक जगह से उसकी प्रतिमा बनाकर ले जाते हैं, रंगभूमि तक जाते हैं और रंगभूमि में उसको जला देते हैं। तो वो जो उत्सव होता है वो केवल मथुरा में होता है। एक राधा रानी के झूलन का उत्सव होता है हरियाली तीज पे, तब एक रथ यात्रा निकलती है। वो बरसाने से श्रीदामा जी रथ लेके निकलते हैं और नंदगांव में पहुंचते हैं, वहां से राधा रानी को लेकर अपने मायके आते हैं, घर पे आते हैं, वहां पर उनको झूला झुलाते हैं। तो ये जो रथ यात्रा है वो भी केवल एक ही जगह पर होती है, बरसाने से नंदगांव। ऐसे ब्रज में कई प्रकार के उत्सव हैं जो केवल वहीं पर होते हैं और बाकी जगह नहीं होते, तो बाकी जगह के लोग वहां पहुंचते हैं उसको देखने के लिए। तो ये चरकुला नृत्य जो है राधा अष्टमी पे, मतलब आज के दिन मुखारा गांव में होता है, जब रावल में और बरसाने में राधाष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है आज, ठीक है, उसी समय पर मुखारा देवी पे चरकुला नृत्य चल रहे हैं। तो आज के तारीख में भी चरकुला नृत्य जो है ब्रज के संस्कृति में एक श्रेष्ठ नृत्य कला है। इसकी बहुत सारी अकादमी भी है जहां पर ये नृत्य सिखाते हैं लोगों को, उसकी प्रतियोगिता भी होती है, हर साल पेपर में न्यूज आता है कि इस साल नंदगांव की कन्या ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया, इस साल वृंदावन की कन्या ने प्राप्त कर लिया, उसको फोटो भी आते हैं, वो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं उसको। तो ये आनंद की घड़ी है जहां पर मुखारा देवी ने बड़े प्रेम से चरकुला नृत्य किया। इसके कुछ दिन पहले कृष्ण और राजा रानी, कृष्ण और बलराम जी का नामकरण करने के लिए कौन आए थे? कौन आए थे? सब लोग बोलिए। क्योंकि गर्ग मुनि वसुदेव के कुल पुरोहित थे, और कुल पुरोहित का कर्तव्य होता है कि जितने भी संतान होते हैं उनके सारे संस्कार वो करें। लेकिन धर्म संकट ये भी था कि अगर बच्चों का नामकरण विधि करने के लिए वसुदेव के कुल पुरोहित गर्गाचार्य ब्रज में गए और वहां के दो बालकों का नामकरण किया, तो उसका मीनिंग क्या निकला? ये वसुदेव के पुत्र हैं वो। तो ये कंस को पता चलेगा कि अगर आप ओपन रूप में करेंगे तो। इसलिए उन्होंने कहा कि गुप्त रूप में करो। तो गुप्त रूप में उन्होंने गौशाला में कृष्ण बलराम का नामकरण किया, और कृष्ण बलराम का नामकरण करने के पश्चात तुरंत वो रावल चले गए। रावल जाकर उन्होंने देखो, जब रावल गए तो उन्होंने ये जो रहस्यमय बात थी कि मैं कृष्ण और बलराम का नामकरण करने के लिए आया था, ये बात गुप्त रूप में वृषभानु महाराज को बताई। तो वृषभानु महाराज ने जब दर्शन दिया उनको, तब ये ऐसे कहते हैं कि वो छत्र धारण करने से इंद्र की तरह नजर आ रहे थे। वृषभानु महाराज जो राजदंड है, रॉयल इंसिग्निया, वो धारण करके वो प्रति धर्मराज यानी यमराज नजर आ रहे थे, और वो अनेक सूर्यों की तरह प्रकाशित हो रहे थे, और सारी दिशाएं उनके तेज से प्रकाशित हो रही थी। ये वृषभानु महाराज का वर्णन आ रहा है गर्ग संहिता में। तो वृषभानु ने महाराज ने गर्गाचार्य का स्वागत किया, पाद्य पूजन किया, परिक्रमा किया, उनका सेवा किया। तो वृषभानु महाराज ने फिर राधा रानी की प्राप्ति के बारे में उनको सुनाया। तो वृषभानु महाराज कहते हैं कि ये सब बातों का रहस्य समझाने के लिए मैं आया हूं। वो कहते हैं वृषभानु महाराज की मेरी जो कन्या है राधिका, उसका विवाह किससे होगा, सर्वोत्तम वर कौन होगा? जब ये प्रश्न पूछते हैं तो वृषभानु महाराज को अपने महल से लेकर हाथ पकड़कर गर्गाचार्य एकांत जगह में जाते हैं, कोई और नहीं है वहां पर, केवल वृषभानु महाराज और गर्गाचार्य हैं। तो फिर उस समय जाकर गर्गाचार्य ने एकांत जगह पर यमुना किनारे में कहा कि अखिल ब्रह्मांड पति गोलोक धामेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण हरि अभी गोकुल में नंद महाराज के यहां पधारे हैं, जिनका नामकरण विधि करके मैं आ रहा हूं। अनंत शेष भगवान शंकरषण जी रोहिणी के गर्भ से आए हैं बलराम बनकर, उनका भी नामकरण करके आ रहा हूं। तो वृषभानु महाराज कहते हैं नंद जो है वो परम 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 भाग्यशाली है, उनका भाग्य मैं वर्णन नहीं कर सकता, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा उनका भाग्य है। तो गर्ग मुनि कहते हैं कि पृथ्वी के भार को नष्ट करने के लिए, राक्षसों को, जो कंस जैसे राक्षस हैं उनको नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए हैं, और उनकी जो परम प्रियतमा सखी है, अंतरंगा शक्ति है, वो आपके घर में, गौलोक की अंतरंगा शक्ति कृष्ण की आपके घर में राधिका के रूप में विराजमान है। तो श्री वृषभानु महाराज सुनकर इतना आनंद विभोर हो जाते हैं, इतना आनंद विभोर हो जाते हैं, तुरंत अपने पत्नी को बुलाते हैं, सब बातें उनको बताते हैं गर्ग मुनि के साथ। वो कहते हैं कि मैं इतना ऋणी हूं आपका महाराज जी, इतना ऋणी हूं कि आपने मुझे आकर ये बात बताई, और मैं अभी मेरी कन्या का विवाह केवल कृष्ण से करूंगा, और आपको उसका पौरोहित्य करना पड़ेगा। तो गर्ग महाराज क्या कहते हैं, नहीं मैं नहीं इसका पौरोहित बन सकता, इनका विवाह होगा जरूर दोनों का, लेकिन इनका विवाह जो है वो ब्रह्मा जी आकर करेंगे। इसलिए वो कहते हैं मैं उनका विवाह नहीं कर सकता, भांडिर वन में ब्रह्मा जी के पौरोहित्य में इनका विवाह होगा। जिन राधा रानी का दर्शन किसी भी देवता को दुर्लभ है, नामुमकिन है, इस तपियों को, ध्यानियों को, और यज्ञ करने वालों को, और तपस्या करने वालों को, योगियों को, किसी को भी जिनका दर्शन अति दुर्लभ है, ऐसी राधा रानी आपके घर में निवास कर रही है, और जितने भी गोप और गोपियां यहां पर प्रकट हुए हैं वो सब गौलोक से राधा रानी की इच्छा से ही प्रकट हुए हैं, वो सब उनके ही विस्तार हैं, ऐसे गर्ग मुनि समझाते हैं। तो फिर वृषभानु और कीर्ति मैया कहती हैं कृपा करके हमें राधा नाम का शब्द का अर्थ बताइए। गर्ग मुनि राधा नाम का अर्थ समझाना आरंभ करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ध्यान से सुनते होंगे। वो कहते हैं कि एक बार मैं मेरे शिष्यों को लेकर गंधमादन पर्वत पे गया था, ऐसे गर्ग मुनि बता रहे हैं। वहां पर नारायण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सामवेद का सार मुझे सुनाया। वो सामवेद के सार में उन्होंने राधा रानी के नाम का अर्थ भी सुनाया। राधा नाम जो है वो चार अक्षर से बना है, र आ ध आ, बराबर। तो वो कहते हैं कि र का अक्षर जो है रमा यानी श्री ऐश्वर्य, आ का अर्थ है गोपियां यानी लीला। गोपियां क्या है? भगवान की लीला स्वरूपा हैं। गोपियां भगवान की लीलाओं को विस्तार करती है, लीलाओं में सहायता करती है, लीला की वृद्धि करती है, लीला में प्रेरणा देती है, लीलाओं का सहारा है भगवान का वो। तो आ यानी गोपियां यानी लीलाएं, ध यानी धरा यानी भूमि देवी, और एक आ है वो है विरजा। ये विरजा जो है एक बहुत ही श्रेष्ठ गोपी है और वो भौतिक जगत, भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि इसके बीच में भी नदी के रूप में बहती है। शी फ्लोज एज अ रिवर, उसके नाम का अर्थ है विरजा। रजोगुण के परे जब आदमी पहुंचता है विशुद्ध सत्व में तो वो विरजा को पार कर सकता है, और विरजा को पार करके फिर दिव्य लोक में प्रवेश कर सकता है। तो ये जो चार स्त्रियां हैं, चार देवियां हैं, वो श्री कृष्ण का तेज इस चार रूप में प्रकट हुआ है, हाँ, रमा लीला भूमि और विरजा। और ये चारों श्री कृष्ण की पत्नियां बनी हुई है, गौलोक की पत्नियां हैं श्री कृष्ण की। तो एक बार ये चारों पत्नियां जब दिव्य कुंज में प्रवेश कर गई तो राधा रानी का दर्शन हुआ। तो राधा रानी का दर्शन होते ही ये चारों पत्नियां कृष्ण की राधा रानी में विलीन हो गई। इसलिए राधा रानी को नारायण भगवान बता रहे हैं सामवेद के सार के रूप में कि राधा रानी ये एक परिपूर्णतमा है। वो ऐश्वर्य की भी सन्निधि है, वो लीलाओं का भी सागर है, वो धरा की तरह आश्रय भी है और विरजा की तरह सुंदर भी है, और वो रजोगुण से पार करने को मदद करने वाली भी है। राधा रानी आश्रय स्वरूप है, राधा रानी जो है आश्रय विग्रह है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम विग्रह है, राधा रानी आश्रय विग्रह है, क्योंकि राधा रानी का आश्रय ग्रहण करके ही श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है। राधा रानी के बिना श्री कृष्ण की शरण अपने आप नहीं प्राप्त हो सकती है, हम लोग कितना भी चाहेंगे तो परिपूर्णतमा के रूप में उन्होंने उनका वर्णन किया। और जो लोग राधा कृष्ण का नाम बार बार दोहराते हैं, उच्चारण करते हैं, पुकारते हैं, नारायण भगवान बता रहे हैं गर्ग मुनि को, वो परम भगवान को सहजता से प्राप्त करते हैं, परम भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चार पुरुषार्थ जो है वो तुच्छ हो जाते हैं उसके सामने। चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भी लौकिक पुरुषार्थ कहा गया इनको। काम और अर्थ तो पूरी तरह से लौकिक है क्योंकि वो विश्व के अंदर ही समाये हुए हैं। धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, संपत्ति कमाना, उसमें उसका भोग लेना, कमाकर उसका भोग लेने काम। तो काम और अर्थ भी हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन काम और जीवन का अल्टीमेट पर्पज नहीं है। धर्म और मोक्ष हमारे जीवन का पर्पज है, लेकिन वो भी लौकिक है। वो केवल आपको यहां के बंधनों से मुक्त कराएगा, यानी नेगेटिविटी से जीरो पर लाकर खड़ा करेगा, न्यूट्रलिटी पर लाकर खड़ा कर देगा। तो मोक्ष कोई परम प्राप्ति नहीं है, मोक्ष केवल बंधन मुक्ति है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो बंधन है उससे केवल आप मुक्त हो गए, आगे क्या करना है ना? अभी आप MBBS हो गए, आगे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, नौकरी करना है, हॉस्पिटल खोलना है, क्योंकि अटैच होना है, दवाखाना खोलना है, वो सब आगे की बातें हैं, वो पॉजिटिव एक्टिविटी है। अभी तक केवल क्वालिफाई होने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो ये भगवान की प्राप्ति तो उसके आगे की बात है। तो राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करने से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, श्री कृष्ण का सन्निधि प्राप्त होती है, गौलोक धाम की प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त होती है। ये केवल हरे कृष्णा बोलने वालों का प्राप्ति है, ध्यान रखना, क्योंकि हरा भी भगवान राधा रानी का एक नाम है। क्यों नाम उनका हरा देवी है? क्योंकि वो सबके दिल को हरण कर लेती है और साक्षात परम भगवान जो सबको आकर्षित करते हैं, सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करने वाले हैं और साथ साथ सबका ध्यान तो आकर्षित करते हैं लेकिन सबका पाप भी आकर्षित कर लेते हैं। उनके दर्शन मात्र से सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जिनका नाम का उच्चारण करने से सबका पाप भी वो हरण कर लेते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान का ध्यान वो खींच लेती है। इसलिए उसका नाम हरा देवी है। और जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो हम हरे कहते हैं, हरे कृष्ण यानी राधे कृष्ण। युगल मंत्र जब उच्चारण करते हैं तो हम राधे कृष्ण बोलते हैं, और जब महामंत्र महाप्रभु द्वारा दिया हुआ करते हैं तो हरे कृष्ण बोलते हैं। और विशेष बात इसमें यह है कि श्री कृष्ण को पुकारने के पहले हम राधा रानी को पुकारते हैं, इसमें भी बहुत रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि अगर हम प्रत्यक्ष केवल कृष्ण को पुकारेंगे तो कृष्ण देखेंगे कि नहीं देखेंगे इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम राधे पुकारेंगे, समझो किसी के घर में बालक है, समझो उसका नाम सुनील है और ये मंदिर में कोई जोर से पुकार रहा है सुनील सुनील सुनील, तो सुनील शायद नहीं देखेगा लेकिन सुनील की माँ जरूर देखेगी, है ना, मेरे बच्चे को कौन पुकार रहा है, हु इज कॉलिंग माई सन, हु इज कॉलिंग माई बेलेवेड, मेरे प्रिय बालक सुनील को कौन पुकार रहा है। तो आप सुनील को जब पुकार रहे हो तो सुनील के प्रिय व्यक्ति का भी ध्यान आकर्षित कर रहे हो। तो श्री कृष्ण भगवान को पुकारेंगे आप शायद वो नहीं सुनेंगे, लेकिन जैसे आप हरे और राधे पुकारेंगे तो श्री कृष्ण देखेंगे कि मेरी प्रिय राधा रानी को कौन पुकार रहा है। इस तरह से हमेशा हम हरे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीताराम इस नाम से जोड़ी को पुकारते हैं। उम्मीद यह है कि जो शक्ति है भगवान की, या तो सीता देवी के रूप में प्रकट हुई है, या तो लक्ष्मी देवी के रूप में प्रकट हुई है, या राधा रानी के नाम से प्रकट हुई है, वो बहुत दयालु है, उनके स्वामी से अधिक दयालु है, अधिक करुणा वाली है, ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, और वो बहुत सारे दुख भी हमारे दूर करती है, बहुत सारे दोष भी हमारे दूर करती है, हमारे दोषों को वजह से हमको त्याग नहीं देती है, दोषों के साथ में होने पर भी जब उनको पुकारते हैं तो वो तुरंत हमको स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें उम्मीद है, आशा है या अपेक्षा है कि जब वो स्वीकार करेंगी और वो प्रस्तुत करेंगी तो कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे, वो टाल नहीं पाएंगे नकार नहीं पाएंगे उसको। इसलिए ये बहुत ही रहस्यमय सिद्धांत है कि हम हमेशा सीताराम राधेश्याम लक्ष्मी नारायण इस प्रकार से पुकारते हैं, ताकि जिनको पुकारना है उनको इनके माध्यम से पुकारेंगे तो सहजता से उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होगा। बाद में तो वो बता रहे हैं गर्ग मुनि की धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले जो भी चार पुरुष आते हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं, वो निरर्थक बन जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं जब हम राधा कृष्ण का नाम पुकारते हैं। राधा कृष्ण का नाम जो है ये पंचम पुरुषार्थ है, प्रेम पुमार तो पहा, प्रेम पुमार तो महान, मोक्ष में प्रेम की प्राप्ति होगी ही नहीं होगी ऐसी गारंटी नहीं है। मोक्ष यानी न्यूट्रैलिटी, अधिकतर लोग जब मोक्ष प्राप्त करने के बाद कुछ गोल नहीं होता लाइफ में तो ब्रह्मज्योति में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मज्योति क्या है? संधिनी यानी शाश्वत अस्तित्व, वहां पर ज्ञान और एक्टिविटी कुछ नहीं है, आप खाली शाश्वत हो, जन्म मृत्यु नहीं हो रही वहां पर, शरीर बुढ़ापे वाला नहीं है, शरीर भी होता नहीं वहां पर, लेकिन वो शाश्वती केवल हमको प्राप्त होती है, आत्मा शाश्वती में निवास प्राप्त कर लेती है। लेकिन शाश्वती में बहुत देर रहने से जीव बोर हो जाता है, उसको गतिविधि चाहिए, क्योंकि जीव का स्वरूप है रिलेशनशिप्स में, वो संबंधों में जीव का आनंद छुपा हुआ है। यहां तक कि हमारा हम जो है वो जीव शरीर धारण करके जब पृथ्वी पर आते हैं तो तब भी हम आदान प्रदान में ही ज्यादा आनंद का या दुख का अनुभव करते हैं। अवर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस लाइज इन रिलेशनशिप विद अदर्स, और सुख प्राप्त करना है तो भी हमको आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। तो ये जो आदान प्रदान है वो सत्य जो है ब्रह्म ज्योति में नहीं होता है, इसलिए शास्त्र में लिखा है कि सत्य को यानी केवल मोक्ष को प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाले जीव कुछ समय के बाद में पुनः भौतिक जगत में पतित हो जाते हैं, शरीर धारण करते हैं और फिर जनता की सेवा करने में अपने आप को लगा देते हैं, जैसे हॉस्पिटल खोलते हैं या और कोई धर्मार्थ कार्य करते हैं, क्योंकि उनको अन्य जीवों के प्रति जब तक संबंध नहीं होता सेवा वाला तब तक उनको पूर्ति का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब तक ये सेवा वाली प्रवृत्ति भगवान के अंदर हम लोग स्थापित नहीं करते हैं तब तक जीव की अंतिम शांति परम पूर्णता नहीं होती है। इसलिए भक्ति करना चाहिए, भक्ति ये पॉजिटिव सकारात्मक एक्टिविटी है, मोक्ष से भी परे है वो। मोक्ष जो होता है ना वो परम भक्ति करने से मोक्ष लघुता कृता, यानी परम भक्ति जो है मोक्ष को लघु कर देती है, छोटा कर देती है, मोक्ष को इनसिग्निफिकेंट बना देती है। और वो जो शुद्ध भक्ति है उसका स्वरूप राधा रानी है, सांद्रानंद विशेष आत्मा, वो भक्ति करने वाले जीव को राधा रानी की तरफ से अनन्य प्रकार के सुंदर सुंदर दिव्य अनुभव होने लगते हैं। और राधा रानी की तरफ से जो भक्ति प्राप्त होती है इससे एक और गुण रूप को समझाते हैं, वो है श्री कृष्ण आकर्षणी, वो श्री कृष्ण जो किसी को सबको आकर्षित कर लेते हैं, वो स्वयं उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं जो राधा रानी का जो भेंट है हमारे लिए, शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा यानी राधा कृष्ण के नाम का जप, ये जो राधा रानी की तरफ से प्राप्त हो गया है उसकी वजह से श्री कृष्ण का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। फिर आगे जाकर गर्ग मुनि बताते हैं कि रा उच्चारण करने से सब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, रा उच्चारण करने से गर्भवास नष्ट हो जाता है, यानी गर्भवास जो प्राप्त होता है मृत्यु के बाद में, जब कर्मों की पूर्ति नहीं हुई है हमारी, हमारा साधना सिद्ध नहीं हुई है तो हम दोबारा गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो वो जो गर्भवास है बहुत क्लेशदायक है, वो गर्भ का नाश, गर्भवास का नाश होता है केवल रा का उच्चारण करने से, और रा का उच्चारण करने से डिसीज और डेथ, रोग और मृत्यु का भी नाश हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो कहते हैं धा उच्चारण करने से क्या होता है, पूरे भाव बंधन से मुक्ति हो जाती है। फिर अभी कृष्ण भगवान वर्ग संहिता में उनका वर्णन देते हैं कि राधा रानी के नाम का महिमा क्या है, तो बताते हैं रा शब्दम कुर्वस्त्र कुर्वस्त्रास्तो ददामी भक्ति उत्तमा, रा उच्चारण करने वाले व्यक्ति को मैं उत्तम भक्ति प्रदान करता हूं, और धा उच्चारण करने वाले व्यक्ति के पीछे भ्रमित होकर भागता हूं, धावत यैव ससंभ्रमः, धा उच्चब्दम कुर्वतः पश्चात यामी श्रवण लोभतः। ऐसे क्या कहते हैं, लालायित होकर मोहित होकर उसके पीछे पीछे भागता हूं जो राधा नाम का उच्चारण करता है, मैं उसी का हो जाता हूं जिसको जिनके कहते हैं कि योगी जपत तपी जपत ध्यानी जपत, हाँ अनंत जन्मों तक योगी ध्यानी तपस्वी कर्मकांडी उनको पूजन कर रहे हैं, और इतने अनंत जन्म योग योग और धर्मकांड करने के पश्चात भी जिनके शरीर के 20 नाखूनों में से हर एक नाखून में से अनंत किरणें प्रकाशित हो रही है, उन अनंत किरणों में से एक किरण का दर्शन भी नहीं होता है उनको, नाखून का दर्शन तो दूर ही रहा, भगवान का दर्शन तो दूर ही रहा, ऐसे दुर्लभ भगवान है वो भगवान जो अति दुर्लभ है, वो राधा नाम लेते ही आपके वश में हो जाते हैं, ऐसा भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं कैसे वश हो रहा हूं। अगर आप भगवान को पूछ रहे हैं आप इतने दुर्लभ है योगी भी ध्यान गम्यम, योगियों को भी ध्यान में प्राप्त नहीं होते तो आपको प्राप्त कैसे किया जाए, तो श्री कृष्ण भगवान भी रहस्य खोल रहे हैं कि धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामी श्रवण लोभतः। आगे बताते हैं रा शब्द उच्चारेण देवस पीतो भक्ति भवती माधव, माधव भगवान जो है वो हरे कृष्णा। अभी हम हमारे कथा को 2 मिनट के लिए विश्राम देते हैं और युगल प्रिया माता जी अब आइए। संक्षेप में आपको बताता हूं कि मैं जब विद्यालय में था छोटा सा बालक 10 साल की उम्र का, तब मैं शारदाश्रम विद्या मंदिर में था और हमारी क्या कहें उनके बारे में, हमारी शिक्षिका जो हमको इंग्लिश पढ़ाती थी उनका नाम मिसेस पुष्पा तड़वलकर है, वो हमारे स्कूल से निवृत्त होने के बाद पुना में औंध में सेटल हो गई है, तो आज हमारा परम भाग्य है कि वो हमारी कथा में यहाँ पर आई हैं, तो हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो आज भले ही हम यहाँ पर राधा रानी के विषय में प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन जैसे परम भगवान भी जन्म लेते हैं गोकुल में, लेकिन बालक के रूप में जन्म लेते हैं, तो यशोदा माई उनको बोलना सिखाती है, यशोदा माई उनको चलना सिखाती है, जो सारे विश्व को चलाते हैं उनको कृष्ण राधा रानी यशोदा माई हाथ पकड़कर चलना सिखा रही है, और ऐसा बोल रही है ये तो मूर्ख है, ये तो बिल्कुल बुद्धू है, ये तो चलता ही नहीं है, केवल घुंघरू पहनकर पैर से आवाज आ रही है इसलिए उसको ठोक रहा है जमीन पर छुम छुम छुम, और आगे ही चलने को नहीं हो रहा है, मैं इसको खींच रही है, कह रहे हैं ठीक से चल गिर जाएगा, फिर भी वो चल नहीं रहा है, ऐसे ही रोहिणी को बता रही है यशोदा। तो वैसे ही जब हम बालक अवस्था में थे तो हमारे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं भाषा का, शास्त्र का, भूगोल का, इतिहास का, और हमें योग्य बनाते हैं, जब हम स्कूल से आगे बढ़ते हैं फिर हम जाकर कॉलेज में प्रवेश कर सकते हैं, महाविद्यालय में, और फिर महाविद्यालय से फिर हम लोग विशिष्ट कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मेडिकल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर, किसी भी समय पर जो विद्यालय की शिक्षिकाओं के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम कभी भूल नहीं सकते। तो इस दृष्टि से हम हमारे मैडम तलवड़कर के बहुत 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 ऋणी हैं, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हमें मूलभूत ज्ञान विद्यालय में प्राप्त हुआ था। तो आज मेरे लिए ये बहुत ही भावनापूर्ण घटना है कि मैं व्यासपीठ पे बैठा हूँ और कथा कर रहा हूँ और हमारी मैडम वहाँ बैठ कर सुन रही है, और साथ में हमारे वर्ग मित्र भी आए हैं और मेरे बड़े भाई भी यहाँ पर आए हैं, प्रेमानंद शानबाग वहाँ बैठे हैं और अविनाश पी से हमारे विद्यालय के साथी भी बैठे हैं। तो ये बहुत गदगद भाव करने वाला समय है, प्रसंग है हमारे लिए। राधाष्टमी का परम दिन है, इस शुभ अवसर पर कल हमारा शिक्षक दिन, टीचर्स डे था, मैंने उनको मैसेज भी दिया था कल, शायद पढ़ा होगा आपने। तो ये बड़े भाग्य की बात है, मैं इसके लिए आपका भी ऋणी हूँ और भगवान का भी ऋणी हूँ कि भगवान ने ऐसा सुंदर योग आज संपन्न किया है। तो मैं बता रहा था कि ये जो राधा नाम है, राधा रानी का, वो कैसे श्री कृष्ण को वश में कर लेता है। राधा नाम श्री कृष्ण का चिरंतन चिंतन है। अभी जैसे हम लोग साधना करते हैं ना, हम लोग सब लोग साधना करते हैं, हमको गुरुजी ने मंत्र दिया है उसको हम जपते हैं, गुरुजी ने कुछ गुप्त मंत्र दिए हैं उसको हम दिन में 3 बार जपते हैं, और फिर नियम दिए हैं नियम का पालन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, कुछ वस्तु खाते नहीं हैं, आहार में निषेध है, कुछ विधि है, विधि में भगवान को अर्पण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और तीर्थ यात्रा करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, विग्रहों की पूजा करते हैं, ऐसे साधना का हमारा स्वरूप है। और हम लोग ये साधना क्यों करते हैं, ताकि हम हमारे इष्ट को, जो साधना का इष्ट है, उसकी कृपा प्राप्त करें। तो वैसे श्री कृष्ण भगवान भी जो बताते हैं वो खुद भी करते हैं। सबसे बड़े आचार्य श्री कृष्ण हैं। आचार्य की व्याख्या क्या है, जो खुद के उदाहरण से लोगों को सिखाते हैं उनको आचार्य कहते हैं। जो बोल रहे हैं वो खुद करते हैं। तुकाराम महाराज भी बताते ना, बोले तैसा साले त्याची वंदा भी पाऊले। वंदनीय कौन होता है, जो जैसे बोलता है वैसे करता है, उसी को वंदनीय मानते हैं, उसी को वंदन करते हैं हम। तो उसी तरह से श्री कृष्ण भगवान सर्वोत्तम आचार्य हैं। हमारे जितने आचार्य हैं वो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, और सर्वोत्तम आचार्य के रूप में श्री कृष्ण भी अपनी साधना करते हैं। और उनकी साधना क्या है, उनकी साधना राधा का नाम है, राधा रानी के नाम का वो उच्चारण करते हैं जब भी वो, मैंने कहा ना राधा पार्थ सारथी नाम क्यों रखा गया मूर्तियों का दिल्ली में, क्योंकि पार्थ सारथी के रूप में जब युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं तभी भी राधा रानी का ध्यान कर रहे हैं, राधा रानी का चिंतन उनके अंतर मन में, अंतर हृदय पटल में निरंतर चलते रहता है। तो वो कृष्ण जब ब्रज में रहते हैं तो आप जानते हैं ना, कभी कभी रास में गोपियों को गर्व होता है, गोपियां जो है वो सोचती कि मैं कितनी महान हूं, ये सभी गोपियों को छोड़कर वो मेरे साथ अकेले में नृत्य कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो सभी गोपियों के साथ में एक एक रूप में नृत्य कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ करने वाले नृत्य में वो इतने मग्न है क्योंकि बाजू वाले गोपी के साथ कौन है वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये गोपियों की विशेषता है, वो मग्नता उनकी ऐसी है कि उसकी ही सम्मुख सन्निधि में क्या हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आता है। वो अपने कृष्ण के साथ जो एक रूप धारण करके उनके साथ लीला कर रहे हैं, इतने मग्न है कि उसके परिणाम स्वरूप उनके मन में भी गर्व होता है, देखो सभी गोपियों को, यहां तक राधा रानी को भी छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो जब सभी गोपियों के मन में ये थोड़े से अहंकार की वृद्धि होती है तो श्री कृष्ण भगवान तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं। लेकिन अंतर्धान होने के बाद भी उनको, श्री कृष्ण को राधा रानी का और गोपियों का विरह सहन नहीं होता है, तो एक वृक्ष के पास आते हैं, इमली तला जिसको कहते हैं, इमली का पेड़ है जमुना जी के किनारे पे, वहां पर आके बैठ जाते हैं और ध्यान लगाते हैं आंख बंद करके, मुख में राधा 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 का नाम ले रहे हैं, मुख से राधा का नाम ले रहे हैं और हृदय पटल में राधा रानी के दो चरणों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगिंद्र वंद्यत, जो योगियों के इंद्र हैं, योगियों के राजा हैं, श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, वो कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर कुंज मंदिर, कुंज में जो मंदिर बना हुआ है उसके अंदर जो कल्प वृक्ष है उसके किनारे बैठे हुए हैं, यमुना जी को निहार रहे हैं, फिर आंखें बंद कर लेते हैं, मुख से मंद मंद राधा रानी का उच्चारण करते हैं और हृदय पटल पे उनके चरणों पर ध्यान करते हैं। क्या लिखा है? पद ज्योति ध्यानर पर, पद ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपति याम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, प्रेम और अश्रु, प्रेम के अश्रुओं से पूर्ण आंखों से हरि स्वयं राधा रानी का द्वय अक्षरी नाम जपते हैं। केनापि अद्भुतम उल्लसद्र अतिरसा नंदेन सम्मोहिता सा राधेति सदा स्मृति में विद्या परा द्वय अक्षरा, ऐसी राधा रानी का नाम जप रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, आप देखिए क्या हो रहा है, जब मुख से राधा का नाम ले रहे हैं, जैसे हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम ये नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा मन तो यहां वहां भटकता है, सोच रहे प्रसाद में क्या होगा, दोपहर में क्या बनेगा, कब प्रवचन समाप्त होगा, बहुत नींद आ रही है, शाम को यहां जाना है, बैंक में से पैसे निकलना है, अभी बेटी के लिए खरीदना है, वाइफ ये फोन कर रही है बीच में, उसको बाद में फोन करना है, ऐसे कई सारे विचार एक साथ में चलते हैं। जप तो कर रहे हैं हम लोग, कुछ हमारा ध्यान जप में है, कुछ हमारा ध्यान बटा हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण हमको बता रहे हैं कि जप जो है भगवान के नाम का कैसे करना है। आंखें उनकी बंद है और हृदय पटल में जो उनकी इष्ट है राधा रानी उनके चरणों पर, पद चरण जो ज्योति पर ध्यान कर रहे हो, और तो फिर क्या होता है, फिर इस प्रकार का ध्यान, इस प्रकार का जप करने से उन वो स्वयं राधामय बन जाते हैं, उनका शरीर जो है राधा का वर्ण धारण करता है, वो गौर वर्ण के बन जाते हैं। उनका वर्ण कौन सा है? सांवले रंग का वर्ण है, वो श्याम वर्ण के हैं, घने श्याम के वर्ण से उनका शरीर है, तो उनकी जो घनश्याम की कांति है वो भी बहुत तेजस्वी है, लेकिन वो भी गौर कांति बन जाती है, मतलब अभी वो श्री कृष्ण है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, मोरपंख धारण किए हुए हैं, सब कुछ कौस्तुभ मणि, वो वनमाला पहने हुए हैं, सब कुछ उनका श्रृंगार कृष्ण जैसा है, लेकिन कांति जो श्याम वर्ण की थी वो गौर वर्ण की हो गई है। ये बहुत विचार करने जैसी बात है। परिवर्तन तब होता है जब एकाग्रता होती है। राधा रानी के पैरों पर भी उन्होंने महावर का डिजाइन बनाया है, आल्टा बोलते हैं उसको, वो जो नवविवाहित विवाहित जो कन्या होती है उसका श्रृंगार में, उसके पैर में वो लाल रंग लगाते हैं, उसको आल्टा कहते हैं, उसको जावक कहते हैं, उसको महावर कहते हैं। वो भी करते समय जो सेवा कर रहे हैं भगवान, उनका महावर मिट गया था जावट गांव में, तभी राधा रानी के चरण अपने गोद में लेकर कहते हैं पलक भी न झपकते हुए, उसको कहा गया अपलक, अपलक सेवा किया उन्होंने उनका, पलक भी न झपकते हुए पूर्ण एकाग्रता के साथ उनके चरण कमल अपने गोद में लेकर ठाकुर जी ने उनका आलता महावर का श्रृंगार किया पैर का। तो विशेषता क्या है, श्री कृष्ण का जो कांति है, जो कांति श्री कृष्ण की है, वो परावर्तित कब हुई, जब उन्होंने पूरी ध्यान से अपने हृदय में और अपने मुख से राधा रानी का नाम जप किया। तो हमारा जो जप है भगवान के नाम का, उसमें क्या अपेक्षित है? परिवर्तन अपेक्षित है। हम लोग वो मशीन की तरह रटना नहीं चाहते भगवान का नाम, हम लोग भगवान का नाम ऐसा लेना चाहते हैं जिससे हृदय का परिवर्तन हो, हृदय जो अभक्त है वो भक्त बन जाए, हृदय जो माया में फंसा हुआ है, त्रिगुणों के कार्यों में फंसा हुआ है, वो त्रिगुणातीत कार्य में आए, भगवान के कार्य में आए, जो खुद की सेवा में लगा हुआ है, खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, वो भगवान के इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहे, ये परिवर्तन हमारे लिए इष्ट है। वो परिवर्तन प्राप्त करना है तो एकाग्रता आवश्यकता है, और ये अगर एकाग्रता चाहिए आपको तो इस तिला पर आप ध्यान कीजिए कि श्री कृष्ण कैसे यमुना तटी पे कुंज मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तब जाकर ये परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन केवल परिवर्तन नहीं होता है, जब भी राधा रानी का कांति उन पर चढ़ गई, तो राधा रानी का ध्यान बन गया, तो केवल राधा मई हो गई वो, तो उनको इतने दिव्य आनंद का अनुभव हुआ कि वो खुद भी अपने आप को भूल गए कि मैं कृष्ण हूं, मैं श्याम हूं, मैं गोविंद हूं, मैं गोपाल हूं, ये भी वो भूल गए, अपने अस्तित्व को ही भूल गए और अपने इष्ट के शरीर को, उनके भाव को धारण किया उन्होंने। और जब भी अपने इष्ट के साथ में भाव से एक रूप हो गए तो उन्होंने इतने दिव्य आनंद का अनुभव किया कि कृष्ण भी अचंभित हो गए कि यह कैसा आनंद है जो मुझे भी पता नहीं है। आज तक मैं गौलोक में रहते हुए, गोपियों के संग रहते हुए, ग्वाल बालों के संग रहते हुए, गौचारण करते हुए दिव्य आनंद का आनंद निरंतर करते रहता हूं, लेकिन उस दिव्य आनंद में और आज के आनंद में कुछ अंतर है, ये स्वयं श्री कृष्ण भी अनुभव करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब हम एकाग्रता से भगवान के नाम का जप करते हैं तो परिवर्तन होने के बाद में केवल वहां गाड़ी रुकती नहीं है, परिवर्तन के बाद में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जो आप कार्य कर रहे हो उसमें निरंतर आनंद की प्राप्ति हम करते हैं और लगता है कि वो कार्य छोड़े ही नहीं, उसी में लगे रहे, तब हमारा जप जो है वो सिद्ध हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए जप के विधि को अरुणोदय बेला में करना चाहिए, जिस बेला में राजा रानी का जन्म हुआ था, उस बेला में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं होता है, उस बेला में सत्वगुण का प्रभाव होता है और वो सत्वगुण का प्रभाव से हम विशुद्ध सत्व में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसा वातावरण उस समय बना रहता है, इसलिए भक्तगण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के नाम का जप करते हैं। दिन आने के बाद में जप करने से उतना लाभ नहीं होता है जितना अंधेरे में होता है प्रथम प्रहर में, और वो ऐसे करना चाहिए, फिक्स जगह पर, फिक्स गति में, फिक्स ध्यान से, एकाग्रता से मन को ट्रेन करना चाहिए कि उस समय पर उठते ही भगवान का नाम मुंह में आना चाहिए। वातावरण ही ऐसा बनाना चाहिए कि मन को भी आदत लगे कि इस वातावरण में उठते ही, ये वातावरण ही भगवान के नाम के लिए ही बनाया गया है, ऐसे कंडीशनिंग होना चाहिए मन का, उसलिए उसी को अभ्यास कहते हैं। कोई भी चीज हमें हमारे शिक्षकों ने भी सिखाया है, अभ्यास के बिना कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होती है, कोई भी ज्ञान, कोई भी परीक्षा अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं होती है। भगवान ने भी अर्जुन को बताया, जब भगवान ने अर्जुन ने भगवान को पूछा कि इस मन को कैसे हम कंट्रोल करें, मैं तूफान को अपने हाथों से पकड़ सकता हूं और नियंत्रण कर सकता हूं, लेकिन ये मन को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, क्या करें भगवान बताइए। तो भगवान ने कहा अभ्यास है न तू कौन ते, अभ्यास करना होगा आपको नियमित रूप से। और वो क्या अभ्यास है, फिक्स समय पर उठना, फिक्स जगह पर बैठना और फिक्स गति में भगवान के नाम का उच्चारण करना, तब जाकर मन को अभ्यास होगा और एक दिन वो अभ्यास परिवर्तन में परावर्तित हो जाएगा और वो जब परिवर्तन होगा तो दिव्य आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि इस अभ्यास का परिणाम दिव्य आनंद ही है। और अभी श्री कृष्ण को भी वो दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है, और जब राधा रानी वहां पर आती है तो वो देखती है कि ये क्या विचित्र दृश्य है, इस व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं पूरे ब्रज में, ये हमारे श्याम सुंदर जैसा मोरपंख पहना हुआ है, ये श्याम सुंदर जैसे पीताम्बर पहना हुआ है, उसी के तरह अलंकार पहने हुए हैं, फूलों की माला पहने हुई है, ये सब श्याम सुंदर का ही दर्शन है, लेकिन ये श्याम सुंदर नहीं है क्योंकि इसका वर्ण जो है गौर कांति हो गई है, सांवला वर्ण तो है ही नहीं इसका। तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौन है कौन है कौन है, उतने में वो राधा रानी को कहते हैं कि आप जाओ और देखो कौन है ये, इसका परिचय कराओ। तो राधा रानी आगे जाती है, उनको स्पर्श करती है, जैसे स्पर्श करती है तो श्री कृष्ण जो है वो अंतर्मुख जो पूर्णतः हो गए हैं, पूर्णतः अंदर चले गए वो, और अंतर्मुख में अंतर पटल में राधा रानी के चरणों पर ध्यान कर रहे हैं। वहां से बाह्य स्पर्श किसी का हो गया इसलिए बाह्य चेतना में आते हैं, धीरे धीरे बाहर आते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं तो गौर कांति नष्ट होकर फिर श्याम कांति पुनः आ जाती है, और फिर वो आंखें खोलते हैं तो राधा रानी को सामने पाते हैं, जिसका चिंतन कर रहे थे वो सामने होती है। तब वो पूछती है कि ये क्या राज है, ये क्या रहस्य है, ये हमने कभी देखा नहीं ऐसे। तब वो कहते हैं कि जब मैं आपके विरह में आपके नाम का उच्चारण कर रहा था, आपके चरणों पर ध्यान कर रहा था, तो मेरी ये अवस्था हुई जो मैं नहीं जानता, आप बता रही हो तब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं भी गौर कांति का हो गया था, लेकिन अंदर से जो अनुभव हो रहा था वो तो जरूर बता सकता हूं मैं आपको, बाहर से आपने दर्शन किया लेकिन अंदर से मैंने क्या अनुभव किया वो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही मैंने आपके नाम पर ध्यान किया, आपके चरणों पर मेरा ध्यान केंद्रित किया और जब मैं एकाग्र हो गया तो मुझे ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव हुआ जो मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ था, और वो आनंद आपके स्पर्श से समाप्त हो गया और मैं उस आनंद के प्रति इतना लालायित हो रहा हूं, इतना मोहित हो रहा हूं कि मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं अगला अवतार इसे आनंद को अनुभव करने के लिए, इसके रहस्य को समझने के लिए लूंगा, और 48 साल का एक अवतार लिया श्री चैतन्य महाप्रभु का। और तब जाकर राजा रानी ने कहा कि मेरा ध्यान करने से कुछ समय के लिए जो आपके शरीर पर मेरी कांति आ गई थी वो मैं परमानेंटली मेरी तरफ से ढक दूंगी आपको, आप सदैव उसी कांति से ढके रहोगे ताकि आप सुरक्षित रहोगे, अपने आप को जख्मी नहीं करोगे। तो ऐसा ध्यान भगवान ने इमली तला वृंदावन में किया है, मानसरोवर किनारे भी किया हुआ है, ऐसा ध्यान भगवान ने जगह जगह पर किया है, जहां जहां उनको एकांत मिला है वहां वहां भगवान ने बैठकर ही ध्यान किया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, राधा नाम हरे यानी राधा, इसमें इतनी शक्ति है कि वो हम जैसे पतित जीवों को भी पूर्णतः परावर्तित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, हमारे अंदर अमूलाग्र बदल हो सकता है, भौतिक वासनाओं से मुक्त होकर हम दिव्य भगवान के चरणों के प्रति, सेवा के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। ऐसा शक्ति इस नाम में है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको सबको बताया है कि हम लोग सबके पहले कृष्ण को पुकारने के पहले हरे राधा रानी को पुकारते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा राम की महिमा तो अगाध है। वैसे राधा सुधा निधि नाम का ग्रंथ है जो प्रभुदानंद जी सरस्वती ने लिखा है, वो ब्रज के विषय में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। उसमें उन्हें राधा रानी के नाम के विषय में बहुत चर्चा की है। वो कहते हैं जो ब्रह्मा शुक शिव और नारद मुनि और सुखदेव और देवऋषि, इनको किसी को प्राप्त नहीं होते हैं, वो दुर्लभ भगवान जो है वो राधा रानी का नाम लेते तुरंत प्राप्त होते हैं। ऐसे राधा रानी के चरण में जो रेणु लगे हुए हैं ब्रज के, धूल के जो कण लगे हुए हैं, उन कणों को मैं वंदन करता हूं। तम राधिका चरण रेणु अहम स्मरामी। तो ये बड़े रहस्य की बातें हैं जो हमारे आचार्य समझाते हैं और हम बार बार सुनने पर भी भूल जाते हैं। इसलिए राधाष्टमी का यह दिन है कि इसको याद करें कि हरे कृष्णा क्यों कहते हैं, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, पहले हरे को क्यों पुकारते हैं, क्योंकि हरे का नाम पुकारने से कृष्ण का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है। कितने भी बार कहे भी तो भी अधूरा है ये कथन, क्योंकि जब तक हमारे ये समझ में आएगा और उस रूप से एकाग्रता से हम ध्यान करेंगे तब जाकर ये जीवन में क्या कहते हैं उसको इष्ट सिद्धि हो सकती है, जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हमको ये जन्म दिया गया है, जिसके लिए हम लोग इस विश्व में मनुष्य का शरीर धारण करके जी रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है वो तब पूरा हो सकता है जब इस रहस्य को हम समझें। और ये रहस्य भेद जो है केवल हमारे आचार्यों की वजह से हुआ है। सभी आचार्यों ने सभी लोगों ने ज्ञान दिया है, लेकिन जब हम किसी आचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे हृदय में वो ज्ञान अनुभूति के साथ प्रकाशित करते हैं। इसलिए हर मनुष्य जीव को, जो मनुष्य अपने आप को समझता है, उसको सद्गुरु स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि सद्गुरु जब तक नहीं होते हैं तब तक ये रहस्य वाली बातें साक्षात्कार और अनुभूति के रूप में हृदय में प्रकाशित नहीं होती है। सारा ज्ञान थियोरेटिकल बना रहेगा। आप गीता मुखोद्गत करेंगे, भागवत मुखोद्गत करेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, लेकिन आपके अनुभूति के रूप में आपके पास कुछ नहीं होगा। जब आचार्य हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, जब उनकी हम चरणों के शरणागति लेते हैं, उनसे मंत्र लेते हैं, अनुग्रह लेते हैं, तो उनकी कृपा से जो भी हमने पढ़ा है सुना है वो अनुभूति के रूप में हृदय में प्रकट होता है, और जो अनुभूति के रूप में प्रकट हुआ है वही हम जीवन में अमल कर सकते हैं। वॉट एवर यू हैव रियलाइज्ड फ्रॉम हार्ट, ओनली दैट थिंग यू कैन फॉलो इन लाइफ। बाकी सब चीजें थियोरी के रूप में बनी रहती हैं, और वैसे ही जैसे किताबें हमारे ग्रंथालय में पड़ी रहती है, जैसे थे वैसे, जैसी आए तशी, वैसे ही ज्ञान भी ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका कुछ उपयोग नहीं होता है जब तक हमें गुरु का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है। और ये गुरु जी सद्गुरुदेव जो हैं वो राधा रानी के प्रतिनिधि हैं। जो कृपा राधा रानी हमको करना चाहती है वो श्री गुरु के माध्यम से हमारे जीवन में करती है, और वो राधा रानी को हमारे हृदय में क्या इष्ट है, क्या इच्छित है उनके लिए, वो क्या चाहती है, वो परिवर्तन उनकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, माध्यम से हमारे जीवन में अनुभूति के रूप में प्रकट हो जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम ब्रह्मा जी का वर्णन हमने किया ना अभी कि ब्रह्मा शिव शुक नारद इन लोगों को भी प्राप्त नहीं है, ऐसे भगवान जो है वो राधा रानी के कारण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कैसे प्रयास किया राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का। जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो ब्रह्मा जी, देखो सृष्टि का निर्माण कैसे किया, पहले उन्होंने एक महत्तत्व निर्माण किया जो दिव्य जगत से अलग है, भौतिक जगत का शुरुआत है वो, और वो महत्तत्व यानी बड़ा एक बादल है घना सा, उसमें अंधकार है, उसकी छाया में उसके ऊपर प्रकाश है भगवान के शरीर से निकलने वाला, उसके नीचे अंधकार है, उस अंधकार में महाविष्णु प्रकट होते हैं नारायण के अवतार के रूप में, जो शंकरषण के अवतार है, जो कृष्ण के अवतार है, जो बलराम जी के अवतार है। तो महाविष्णु के द्वारा उनके रंध्रों में से बीज रूप में वैकुंठ ब्रह्मांड निर्माण होते हैं और वो विकसित होते हैं और पूर्ण ब्रह्मांड बन जाते हैं। उस एक ब्रह्मांड का विचार करेंगे अनंत ब्रह्मांडों में से, तो एक ब्रह्मांड में महाविष्णु गर्भ उदक शायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। उनके नाभि से कमल निकलता है, जो हम जानते हैं ना हमेशा वो पड़े हुए हैं, उनके चरणों की सेवा लक्ष्मी जी कर रही हैं, वो सागर में लेटे हुए हैं, गर्भ उदक सागर में लेटे हुए हैं, जैसे गर्भ हमारे पेट में पानी में घूमते रहते हैं वैसे वो गर्भ उदक सागर में लेटे हुए हैं, उनके कमल से नाभि से कमल निकल रहा है, वो शेष नाग के शया पर लेटे हुए हैं, उनके चरणों की लक्ष्मी देवी सेवा कर रही है। तो वो जो कमल है जो खिल रहा है वो ब्रह्मा लोक है, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और फिर वो ब्रह्मा जी जो है यहां तक निर्माण भगवान कर देते हैं, उसके आगे का जो सृष्टि है उपसर्ग सृष्टि वो ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है तो उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है, पूर्ण ऐसे अंधकार में घूम रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि क्या है, मैं क्यों आया, क्या मेरा काम है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या है, पूरे अंधकार में है वो। तो उस समय वो पूरा जो 14 लोक है वो सब जगह घूम के आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता उनको, नो पर्पज इज अंडरस्टूड बाय ब्रह्मा। तो फिर वो गर्भोदक शाही विष्णु जो कृष्ण के अवतार हैं वो उनके हृदय में ज्ञान देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूरयः, उनको चतुश्लोकी भागवत हृदय में बताकर पूरा ज्ञान करा देते हैं, जो भी अनुभूति करनी है वो पूरा उनको अनुभूति के साथ दे देते हैं, केवल ज्ञान देते नहीं है, ज्ञान के साथ साक्षात्कार अनुभूति पूरे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि भौतिक जगत है, जन्म मृत्यु से भरा हुआ है, दुख भरा है, इसमें जो भी जीवों को मैं शरीर धारण कराऊंगा वो सब दुखी भोगने वाले हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, उनका हृदय करुणा से भर जाता है। तो फिर वो तपस्या करने बैठते हैं, 60,000 साल तपस्या करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सत्य युग जो है 17,28,000 साल का होता है, त्रेता युग 12,96,000 साल का होता है, द्वापर युग 8,64,000 साल का होता है, और कलयुग 4,32,000 का होता है। तो जब पहले सत्ययुग के 17,28,000 में से 60,000 वर्ष वो तपस्या करते हैं, इतना करने पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। हम लोग 6 दिन जप करेंगे तो सोचते हैं क्या अभी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्या मन अभी तक नियंत्रित क्यों नहीं हो रहा है, 6 दिन से मैं जप कर रहा हूं, राधाष्टमी को मैंने 64 माला जप किया, अभी मन भटक रहा है मेरा। अरे ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या किया फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर वो ड्यूटी पर चले गए, अपना पूरा सत्ययुग का पूरा ड्यूटी किया उन्होंने निर्माण करने का, प्रजापतियों को जन्म दिया, दक्ष राजा को जन्म दिया, कश्यप को जन्म दिया, योनियों को निर्माण किया, और फिर उस सत्ययुग के 17,28,000 साल के अंतिम 60,000 साल दोबारा तपस्या किया, छोड़ा नहीं। हाँ, उसको कहते हैं चिकाटी, चिकाटी मतलब टेनेसिटी, यानी छोड़ते नहीं है साधक लोग, जब तक साध्य प्राप्त नहीं होता है तब तक वो छोड़ते नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जब तपस्या किया तो 1,20,000 साल तपस्या करने के बाद में कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। तो वर्णन क्या आता है, पुरा कृता युगस्यन्ते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि, ब्रह्मणा ने ब्रह्मा जी ने प्रार्थी कृतयुग में यानी सत्ययुग में भगवान की प्रार्थना की, तो भगवान प्रसन्न हुए उसके 1,20,000 साल के अंत में और पूछा क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि ममोपरि सदा त्वम ही रास क्रीड़ाम करिष्यसि, मेरे ऊपर ममोपरि सदा सदैव तुम आप, हाँ क्या करना है आपको, रास क्रीड़ा करिष्य से, मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे सर पर आपकी रास क्रीड़ा संपन्न हो, मेरा शीश जो है वो आपकी रात रास क्रीड़ा करने के लिए एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म बने, एक स्थान बने। तो कहते ब्रज में चले जाओ, तो ब्रह्मा जी कहते ब्रज तो बहुत बड़ा है कहाँ जाएं, तो कहते हैं वृषभानुपुरम गत्वा, जहां वृषभानु महाराज का राज्य है वहां चले जाओ, जहां राधा रानी निवास करती है। अभी हम लोग को कहा गया कि चलो ब्रज में चलो, तो हम लोग जाएंगे ब्रज में, कहीं कमरा लेंगे, कहीं खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, बस की व्यवस्था करेंगे, और मनुष्य के रूप में ही जाएंगे हम, जब भी आज तक गए हैं क्या गुरु बदली करके गए क्या। लेकिन ब्रह्मा जी जब गए तो वो वहां पर पत्थर बन के गए, वो पर्वत बने, क्यों उन्होंने पर्वत का धारण किया बताइए आप, वो ब्रह्मा के रूप में जाते तो भी वो उनको वहां पर स्थान था, बोले भगवान ने कहा था कि आप पत्थर बनो वहां पर जाके, लेकिन वो पत्थर क्यों बने, इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव है वो, जिसको हम कहते हैं ना द फर्स्ट सिटीजन, उसको हम लोग मेयर कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ अमेरिका इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ पुणे सिटी इज द मेयर ऑफ पुणे, वैसे द फर्स्ट सिटीजन ऑफ ब्रह्मांड इज हु, ब्रह्मा, सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है, जीव तत्व में सबसे श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा जी है, जिसमें कृष्ण के अंदर जो 64 गुण है उसके अंदर 50 गुण पूर्ण तत्व में उनके अंदर प्रकट हुए हैं, पूर्णतः कोई मुकाबला नहीं उनका ब्रह्मा जी का, जो सबके प्रपितामह है, प्र 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 प्रपितामह है, जितने भी जीव आपको दिखाए सबके ग्रैंडफादर वही है, तो वो पितामह जो है वो ब्रज में आए तो कैसे आए, पत्थर बनकर आए, पर्वत बनकर आए, मतलब पर्वत बनना यानी टू बिकम मिस्टर नोबडी। अगर हम पत्थर बनते हैं तो मिस्टर नोबडी बन जाते हैं, कोई भी पैर रखो, कोई भी पेशाब करो, मलमूत्र विसर्जन करो उसके ऊपर, कोई भी उसको कुछ भी कर सकते हैं, वर्षा होगी, बारिश होगी, मलमूत्र हमारा नहीं केवल जानवरों का भी गिरेगा, बंदर का भी गिरेगा, मोर का भी गिरेगा, सबका गिरेगा। और आप खून की चूने कर सकते हैं, जो है वो एक्सेप्ट करना है। पत्थर कुछ करता है क्या जब आप उस पर कुछ करते हो? कुछ नहीं करता है। ऐसी स्थिति ब्रह्मा जी ने स्वीकार की है, ये सही स्थिति है, यानी सार क्या है उसका, नम्रता की स्थिति। ये नम्रता की स्थिति ब्रह्मा जी ने स्वीकार की, तब जाकर भगवान ने उसके उनके शीशों पर, यानी चार शीश है ना उनके, तो चार शिखर वाले पर्वत बने वो ब्रह्माचल, ब्रह्मगिरी, और उन शीशों पर भगवान ने राज क्रीड़ा किया। और जब भगवान आते थे अपने सखाओं को, सखियों को लेकर और लीला करते थे, तो ब्रह्मा जी जरा भाव से पिघलते थे, उनका जो सख्त कठिन पत्थर का शरीर था वो एकदम मुलायम माखन की तरह बन जाता था। तो ब्रह्मा जी ने कैसे प्रवेश किया है बरसाने में, ब्रह्मा जी ने कैसे ब्रज में प्रवेश किया है, उस भाव से हमको प्रवेश करना चाहिए। हम भी जाते हैं ब्रह्माचल के ऊपर चढ़कर राधा रानी का मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन चढ़ने के पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, ये ब्रह्मा जी आप हमारे परम पिता हैं, प्रपितामह हैं, हमारे परम गुरुदेव भी हैं, सभी संप्रदायों के प्रमुख आचार्य भी हैं, हमारे परम गुरु हैं, हमारे गुरु उसी संप्रदाय में आते हैं, और हम आपके ऊपर चलकर भी जाने वाले हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम ऊपर जाकर कोई इंद्रिय भोग नहीं करेंगे, केवल राधा रानी का दर्शन करने के लिए और कुछ हो सके तो सेवा करने के लिए जाएंगे, कोई हमारे इंद्रियों के स्वार्थ के भोग के लिए नहीं जा रहे हैं, ये वादा करके जाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, हमारे लिए एक उदाहरण दे के खड़े हैं वो कि कैसे राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो किस भाव से जाना है, जो अप्राप्य है अगर उसको प्राप्य करना है तो कैसे करना है। एक ही रास्ता है, ज्ञान रास्ता नहीं है, हमारा पद हमारा रास्ता नहीं है, हमारा अधिकार हमारा रास्ता नहीं है, केवल नम्र सेवा भाव, यही हमारा एक ही रास्ता है। ब्रह्मा के पास क्या नहीं था, पूरा सर्वोच्च पद उनके पास में है, पूरा अधिकार उनके पास में है, पूरा प्रभाव उनके पास में है, सब निर्माण उन्होंने किया हुआ है, एवरीथिंग इज इन हिज हैंड्स, सबके नियंता है, सब देवता उनके नियंत्रण में काम करते हैं, तो सबकी समृद्धि उनके पास में है, जिसके लिए हम लालायित हैं, हमारे पास नहीं है वो, उनके पास सब कुछ है। ये सब कुछ होते हुए भी अगर राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो ब्रह्मा जी ने क्या अपनाया, कोई पद का अपनाया नहीं उन्होंने, ज्ञान को नहीं अपनाया, नम्रता को अपनाया। ब्रह्मा जी इतने महान व्यक्तित्व होने पर भी हमको सिखा रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो कौन से भाव को स्वीकार करना है, और स्वयं नम्र भाव से जब पत्थर बने हैं तब उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, कृपा प्राप्त हुई है, भाव की प्राप्ति हुई है। दोलायमान होते थे वो मक्खन की तरह, उन पर लीला करते थे तो भगवान के चरण चिन्ह का निर्माण होता था, क्योंकि अगर मुलायम चीज में आप चल रहे हो, वो चल के चले गए आ गए तो चिन्ह होगा कि नहीं, फिर वो सख्त बनते थे, जब पैर रखते थे भगवान और सखा उनके तो वो मुलायम हो जाते थे, जब पैर आगे निकल के चले गए तो सख्त हो जाते थे, तो उस मुलायम जगह पर जो पैर रखा था उसमें चरणों के चिन्ह निर्माण होते थे, जो आगे जाकर गोपियां उसका वंदन करती थी, पूजन करती थी, रोती थी उनकी याद में, उनके चरणों में जब वो चले गए छोड़ के। तो ये दोलायमान स्थिति शंकर जी की भी हो रही है, शंकर भी महादेव है और ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो, लेकिन ब्रह्मा जी उनको खुद पूजन करते हैं महादेव के रूप में, लौकिक दृष्टि से उनके पुत्र बने लेकिन है तो वो महादेव, वो महादेव भी वहां पत्थर बने हुए हैं, वो भी नंदगांव में पत्थर बने हुए हैं और उनके ऊपर नंद बाबा का महल बना हुआ है, कृष्ण भगवान रहते हैं वहां पर और कृष्ण भगवान बलराम जी सखा वहां पर गौचारण करते हैं, उनके ऊपर यशोदा माई भी चलती है, वो भी भाव विभोर हो जाते हैं, जब जब मुरली बजती है तो वो ऐसे 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 कंपायमान हो जाते हैं। ये सब क्या बता रहे हैं हमको, नम्रता के बिना इनकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है, किसी भी चीज का घमंड करके अहम करके इनकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। दुनिया में बड़े हो सकते हैं आप, अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है आपका, और अधिकार प्राप्त होगा और अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन समय के साथ सब कुछ आपसे छीना जाएगा, सारा पद, सारे अधिकार, सारा प्रभाव, सारा ज्ञान, सारी याददाश्त, स्मरण शक्ति, सब कुछ काल के द्वारा छीनी जाएगी। तो जैसे हम शून्य बनकर आए थे वो शून्य बनकर चले जाएंगे, बीच में जो कार्य करना है वो नम्रता से इनके शरण में जाना है, तो फिर जब अंतिम समय आएगा तो शून्य बन करने जाएंगे, प्रेम भक्ति लेकर गौलोक धाम जाएंगे भगवान के, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, नहीं तो इस जीवन में लंबी आयु तक जीने से क्या लाभ है, अरे वृक्ष भी जीते हैं हजारों साल, अभी कैलिफोर्निया में 10,000 साल के वृक्ष जीवित हैं, क्या अर्थ है उसका? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लाइफ? मनुष्य जीवन कम समय का भी होगा तो इसमें भगवान की भक्ति करने का मौका है, भगवान के नाम को पुकारने का अवसर प्राप्त है, तब ये जीवन सिद्ध हो गया, उसका उद्देश्य पूर्ण होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, हमारे आचार्य शंकराचार्य जी थे 32 साल केवल जिए, लेकिन कितना विश्व में परिवर्तन लाया उन्होंने। प्रभुपाद जी ने केवल 12 साल विश्व में भ्रमण किया अपनी लंबी आयु में, लेकिन पूरी आयु तैयारी में बिताई और 12 साल में ऐसा कार्य किया कि पूरे विश्व में परिवर्तन हो गया, पतित से पतित जीव महान वैष्णव बने। जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए, थोड़े समय का हो लेकिन क्वालिटी का हो, मनुष्य जीवन के सही दर्जा जो भक्त का दर्जा है वो प्राप्त करने वाला हो। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने बरसाने में पर्वत के रूप में चिरंतन निवास प्राप्त किया है और आज भी वहां पर नित्य लीला चलती है, आज हमको दिखाई नहीं पड़ती है, उस समय प्रत्यक्ष हो रही थी, अभी अप्रकट रूप में हो रही है। ये सभी लीलाओं का निरंतर दर्शन ब्रह्मा जी करते हैं और उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए हम जैसे लोगों के चरण कमल भी स्वीकार करते हैं। चरण कमल नहीं, क्या कहते हैं उसको, निवड़ूंगा निवड़ूंगा कैक्टस, हाँ ऐसे हमारे चरण भी है, वो लेके हम जाते हैं ऊपर, बंदर भी टट्टी कर रहे हैं उसके ऊपर, मोर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ सहन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका कृष्ण के लीला का दर्शन हो रहा है। जब कृष्ण के लीला का दर्शन होता है तो बाकी आतंकों का दुख नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं होता है, उसके परे चले जाता है। तो ऐसे बरसाने का इतिहास है, और बरसाने का इतिहास मैंने आपको पहले बता दिया, महासतिया जो है वो आई और उन्होंने पार्वती को जन्म दिया, उन्होंने सीता जी को जन्म दिया, फिर उसने राधा रानी को भी जन्म दिया। उसका और एक इतिहास ऐसा है कि रघुवंश यानी जो सूर्यवंश है उसमें राधा रानी का जन्म हुआ है, मैंने पढ़ा है कि वो सोमवार के दिन उनका जन्म हुआ था देवराज गोत्र में। तो इस वंश में उनके आने के पहले एक राजा थे दिलीप राजा, वो दिलीप राजा एक बार स्वर्ग में गए थे कुछ काम से, तो उन्होंने कामधेनु को प्रणाम नहीं किया, और कामधेनु को प्रणाम नहीं किया तो उनको समझ में नहीं आएगा, वो तो बिजी थे भाई, कभी कभी ध्यान नहीं होता है, लेकिन कामधेनु को प्रणाम न करने से उनको निपुत्रिक होने का शाप लग गया, जो उनको पता ही नहीं है। बहुत साल पृथ्वी पर आए और राज्य किया, लेकिन वृद्ध होने के समय आया फिर भी पुत्र नहीं हो रहा है, तो वशिष्ठ मुनि गुरु जी को बुलाया उन्होंने और कहा महाराज जी क्या हो रहा है, हमारे राज्य का वंश कैसे चलेगा? तो उन्होंने ध्यान लगाया, वो जो त्रिकालदर्शी थे वर्तमान भूत भविष्य को देखने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि इनके हाथ से कामधेनु का अपराध हुआ है इसलिए उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। तो कहते हैं कि अभी कामधेनु की सेवा करने के लिए कामधेनु स्वयं स्वर्ग में किसी काम से चली गई है, तो अभी आपको उनकी पुत्री जो मेरे पास नंदिनी है वो भी कामधेनु जैसी है, उसकी सेवा करनी होगी। तो ये पहले से गौ भक्त थे, अनजाने में अपराध हुआ था, लेकिन दिल से नंदिनी की सेवा करते हैं, और जिस दिन उनकी क्या कहते हैं उसको परीक्षा होती है सेवा की, तो उस दिन एक शेर आता है और वो शेर आता है और वो नंदिनी को खाने को आता है। तो इनकी सेवा करने वाले जो राजा दिलीप हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं आप इनको नहीं खा सकते हैं, नहीं नहीं वो तो मेरा भक्ष्य है, मैं शेर हूँ, वो गाय है, मेरा वो भक्ष्य है, कोई पाप वाप नहीं उसके अंदर। तो कहते नहीं, ये गाय मेरे सेवा में, मतलब मैं सेवा कर रहा हूँ उनकी, मैं उनका सेवक हूँ, इनको आप नहीं खा सकते हो। तो फिर राजा हो तो आप भोजन दे दो, और वो कहते कि फिर मुझे खा जाओ आप। तो शेर राजा को सुनाता है कि एक राजा का जीवन जो है वो 1,00,000 लोगों से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राजा के जीवन से प्रजा का जीवन परिवर्तित होता है। एक राजा के होने से प्रजा या तो इस तरफ या उस तरफ जा सकती है, इसलिए आपका जीवित रहना आवश्यक है। ऐसे यकश्चित गाय तो कई जन्म लेंगी, ऐसे शेर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि गाय मेरे राष्ट्र का आधार है, इसलिए मैं मर जाऊंगा तो चलेगा, और राजा आएगा और चलाएगा मेरे बाद में, कोई और राज्य प्राप्त करेगा, मुझे पुत्र नहीं है तो, लेकिन और कोई राजा बनेगा योग्य व्यक्ति, लेकिन जब तक गऊ है तब तक राज्य का जो अधिष्ठान है वो बना हुआ है, इसलिए मैं गऊ को मरने नहीं दूंगा, खुद मरने को तैयार है। तो शेर बोलता है चलो मरने को तैयार हो जा, तो राजा फिर शीश झुका कर खड़ा रहता है, कभी शीश पर कूदेगा और काट के खाएगा तो शीश झुका कर खड़ा रहता है, और शेर छलांग मारता है हवा में, अचानक कोई फूल के बाला बनता है और गले में गिरता है राजा दिलीप के। वो जो देवता थे वो परीक्षा करने आए थे, तो प्रसन्न हो जाते हैं नंदिनी उनका त्याग देखकर कि मेरे जैसे गाय के लिए राजा अपना जीवन त्याग भी करने को तैयार है, इतना सेवा भावी राजा है। तो फिर दिलीप राजा को एक पुत्र होता है, इसका नाम क्या होता है, रघु, जिसके नाम से हम रघुवंश को जानते हैं। रघुवंश की ये रीत चली आई, प्राण जाई न वचन न जाई, ये जो कहते हैं ना वो रघु जो है, रघुवंश वाले, वो रघु का जन्म होता है। फिर रघु के वंश में इक्ष्वाकु का जन्म होता है। पर ऐसे जाकर आगे अभयकर्ण राजा होते हैं, और अभयकर्ण राजा जो हैं उनके वंश में रसंग राजा का जन्म होता है, और रसंग राजा सबसे पहली बार बरसाने में राज्य स्थापन करते हैं। ही एस्टैब्लिशेस किंगडम इन बरसाना। और रसंग वर्ष में वंश में मही भानु, कंज भानु और वृष भानु महाराज के भाइयों का जन्म हुआ है। इस तरह से राधा रानी का जन्म हुआ है सूर्यवंश में। राधा रानी सूर्यवंशी है और कृष्णा चंद्रवंशी है। हरे कृष्णा। और एक इतिहास है बरसाने का, बहुत सुंदर इतिहास, वो है अनुसुईया देवी का। स्वर्ग में एक बार चर्चा हो रही थी कि सबसे महान सती कौन है। तो जो अपने ब्रह्मांड के तीन प्रमुख देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनकी पत्नियों को लग रहा था हमारे सिवा कौन हो सकता है। मतलब आप चर्चा करना है तो करो भले, लेकिन नाम तो हमारा ही आएगा गोल्ड मेडल में। लेकिन वो देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे में से कोई नहीं, वो पृथ्वी पर है। तो उनको कुतूहल होता है, अरे हम नहीं तो पृथ्वी पर कौन है? वो तो पृथ्वी पर मानव रहते हैं, हम तो देवता है, उनसे श्रेष्ठ हमारा जीवन है। फिर पृथ्वी पर अत्रि मुनि की पत्नी है अनसुईया जी, वो सबसे महान सती है, पतिव्रता। तो वो ईर्ष्या नहीं करते हमारे जैसी, वो कहते हैं कि इनका पतिव्रत्य जो है ना वो प्रकट होना चाहिए। अगर वो सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है तो उनका जो महानता है, गौरव है, सबके लिए प्रकाशित होना चाहिए। इसलिए आप जाके उसकी परीक्षा करो, ताकि वो जैसे सोना कहीं पड़ा हुआ है तो उसका प्रकाश नहीं होता है, जब सोने को अग्नि परीक्षा होती है ना तो वो प्रकाशित हो जाता है, उसका तेज, उसका जो सोना होना है, अस्तित्व सोने का, वो प्रकाश होता है। तो फिर वो तीनों जाते हैं नीचे और भगवती भिक्षांदेही करने के लिए साधु बन जाते हैं। उसकी कुटी में पहुंचते हैं, साधु का भय धारण करते हैं और जोर जोर से पुकारते हैं भगवती भिक्षांदेही, भगवती भिक्षांदेही। तो उस समय वो अपने पति की सेवा में रहती है। कुछ देर बाद आती है तो वो कहते हैं आ जाओ भोजन करो। तो कहते हैं कि हम एक शर्त पर आपका भोजन करेंगे, आपको निर्वस्त्र होकर भोजन हमको भोजन खिलाना पड़ेगा। तो वो समझते हैं कि कुछ दाल में गाला है। तो अंदर जाती है, सवेरे जो पति ने अरुणोदय बेला में उठकर जो भजन किया है, तपस्या किया है, भजन किया है, ध्यान किया है, जो भी किया है, उसके पहले जल को अभिमंत्रित करके पवित्र जल कमंडल में तैयार किया है, उस जल को उपयोग करके सारी पूजा विधि की है। अभी वो जल तीर्थ के रूप में कमंडल में दिन भर के लिए उपलब्ध है। वो कमंडल लेके आती है, उसका पानी लेती है और तीनों पर छिड़कती है। तो तीनों ऋषि मुनि जो है वो नग्न बालक बन जाते हैं। किससे? पतिव्रत के, जिस पति की सेवा की है दिल से, उस पतिव्रता के अपने पति के निर्माण किए हुए जल पर कितनी श्रद्धा है, कि इस जल में इतनी शक्ति है कि वो ऋषियों को बालक बना सकते हैं। इस श्रद्धा के वजह से वो तीनों नग्न बालक बन गए। अभी नग्न बालक के सामने निर्वस्त्र होना कोई संकोच की बात नहीं, और कोई तो है नहीं। तो वो नग्न बालक भोजन के लिए बैठते हैं, उनको भोजन खिलाती है बड़े प्रेम से। तो तीनों बालक इतने अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं कि वहीं रहते हैं। अभी आपके एग्जाम का दिन था 6 सितंबर, 10 से 1 आपकी एग्जाम थी। तो मम्मी क्या बोलेगी, दो घंटे में लौट के आएगा ना घर से, ट्रेन वेन पकड़ के 3 बजे तक आना चाहिए लंच के लिए। लेकिन नहीं आया तो चिंता होगी ना आपको, शाम तक नहीं आया, नेक्स्ट डे भी नहीं आया, अरे एग्जाम ही दे रहे क्या वापस 4 घंटे 6 घंटे बैठा ही एग्जाम में दे रहे। तो ये लोग सोचते हैं अरे तो परीक्षा लेने के लिए कितना समय लगता है। लेकिन कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, आए नहीं पति। तो फिर तीनों जो उनकी पत्नियां हैं वो आई उनके पास, पता है कहाँ गए ना वो। तो उनके घर में पहुंचते हैं और अनसुईया को मिलके पूछते हैं कि माता जी हमारे पति कहाँ हैं। तो अनसुईया कहते हैं वो देखो खेल रहे हैं। तो देखो रेंगते हुए खेल रहे हैं, मट्टी में खेल रहे हैं, बालक बनकर डोल रहे हैं। माता जी हमें पति हमारे वापस चाहिए। अच्छा, तो फिर अपना वो जल लेके आते हैं पति वाला कमंडल वाला, श्रद्धा पूर्वक उस पर छिड़कती है तो पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं, अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं। तो फिर वो जाने का समय आता है। तो अभी वो आसक्ति इतने बने हुए, वो अनसुईया जी को कह रहे हैं कि अनसुईया जी हम आपके वात्सल्य से इतने प्रभावित है कि हम आपका पुत्र बनना चाहते हैं, हमको आशीर्वाद दो कि आप हमारे हम आपके पुत्र बन सकते हैं। तो उन्हें कहा तथास्तु। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एकत्र होकर उनके पुत्र बने। क्या नाम बना उनका? दत्तात्रेय। अत्रि अनसुईया, अत्रि जो त्रिगुण के परे हैं और असुया से मुक्त हैं। जब ऐसे कॉम्बिनेशन होता है ना, हम त्रिगुण से मुक्त होकर असुया से मुक्त हो जाते हैं, तो दत्त हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, यानी भगवान प्रकट हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने भी उनसे जन्म लिया है। किस रूप में लिया है जन्म? चंद्र देवता के रूप में। चंद्र देवता अनसुया के पुत्र अत्री के पुत्र हैं और चंद्र ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और शिव जी ने भी उन्होंने उनकी गर्भ से जन्म लिया है। वो कौन बने हैं? दुर्वासा मुनि। अब ये तो वरदान दिया, आनंद की बात है, बहुत आनंद का, और वात्सल्य बढ़ता रहा आगे। लेकिन जाते जाते एक श्राप भी दिया उनको कि तुमने हमारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा लेना चाहा और परीक्षा लिया भी, इसलिए हम श्राप देते हैं आपको कि आप तीनों पत्थर बन जाएंगे। तो क्या बने वो? ब्रह्मा जी पत्थर बने बरसाने में, विष्णु पत्थर बने गोवर्धन के रूप में, और शंकर पत्थर बने नंदीश्वर के रूप में। नंदगांव में शंकर जी पर्वत बने हुए हैं और विष्णु जी गोवर्धन पर्वत बने हुए हैं। ये भी बरसाने का इतिहास है। कहने का तात्पर्य क्या है कि बड़े से बड़े देवता जो इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, वो भी राधा और कृष्ण के चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए पत्थर बन जाते हैं। तो हम किस झाड़ की पत्ती हैं? हम किस बात पर गर्व कर सकते हैं? हमारा क्या स्थान है, क्या स्थिति है हमारी? हमारा सारा पद जो है, जो विद्या है, जो अधिकार है, जो स्थिति है, जो शक्ति है, वो सब काल के प्रभाव में एक दिन नष्ट होने वाली है। किस चीज पर गर्व करें हम, क्योंकि काल सब कुछ छीनने वाला है हमारे हाथ से। कोई गर्व करने वाली वस्तु नहीं है, कोई पोजिशन भी नहीं है, कोई भगवान ने शक्ति आवेशित भी नहीं किया हमको। और ब्रह्मा जी और शिव जी और सब लोग की इतनी शक्ति है उनके अंदर, फिर भी वो पत्थर बनने के लिए तैयार है। उन्हें झगड़ा नहीं किया, अरे माता जी ऐसा श्राप क्यों दे रही हो, कुछ अलग श्राप दो, उस श्राप दो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा ये श्राप नहीं है, वरदान है। पहले भी वरदान दिया पुत्र बनाने के लिए और अभी भी वरदान ही दे रहे हैं। अरे ब्रज की लीलाओं का दर्शन जो अलभ्य है, दुर्लभ है, वो होगा हमें आसानी से होगा। केवल दर्शन नहीं होगा, हमारे शीश पर सभी चरणों की रज पड़ेगी, क्योंकि उनकी चरणों की रज किसी अन्य जगह पर प्राप्त नहीं होती है। राधा रानी और कृष्ण जो है वो केवल पृथ्वी पर लीला करने के लिए जब आते हैं तो ही नग्न पैर घूमते हैं, बाकी वैकुंठों में कहीं भी कृष्ण के चरणों की रज नहीं है। ना वैकुंठों में है और कहीं जगह पर है, ना स्वर्ग लोकों में है, सब जगह वो चप्पल पहनकर घूमते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर जो द्वारका है, जो श्रीरंगम है, जो जगन्नाथपुरी है, जो बद्रीनाथ क्षेत्र है, सब जगह पर पादत्राण पहन के घूमते हैं वो। उनके पैर का भूमि का संपर्क नहीं होता है, केवल ब्रज में होता है, जहां पर वो अपने भगवत्ता को भी छोड़कर आते हैं। मैं भगवान हूं इसकी भी अनुभूति को छोड़कर आते हैं, वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं और सामान्य व्यक्ति बनकर सर्वोच्च आनंद को लुटाते हैं। उस समय जब नंगे पैर घूमते हैं तो वो उनके पैर में जो धूलिकण लगे हुए हैं उसमें सारा भक्ति का रहस्य छुपा हुआ है और वो इनको प्राप्त होने वाला है। इसलिए वो श्राप कह के नहीं कह रहे हैं उसको, उसको वरदान मान रहे हैं और आनंद से दोलायमान हो रहे हैं, मक्खन की तरह मुलायम हो रहे हैं। ऐसा हमारा राधा रानी की कृपा है और करुणा है। तो अभी समय समाप्त हो रहा है। संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा कि ये सब कथाएं बहुत मनोरंजन देती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मनोरंजन के रूप में उनको सुनना नहीं है हमको। हमको कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं ना, विथ ऑ एंड रेवरेंस, पूरे ऐश्वर्य के भाव के साथ सुनना है, उसको एंजॉय करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि ये लीलाएं स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण का चार स्वरूप हैं, नाम रूप लीला धाम। तो नाम भी स्वयं कृष्ण है, ये रूप जो दिख रहा है वो भी स्वयं कृष्ण है, और जो लीला कर रहे हैं वो भी स्वयं कृष्ण है, और जो धाम में निवास करते हैं वो भी स्वयं कृष्ण है। वो चारों उनको ही स्वरूप है, लेकिन ये चारों स्वरूप जो है वो उनके ज्यादा अधिक दयालु हैं। कृष्ण से अधिक उनका नाम दयालु है, कृष्ण से अधिक उनकी लीला दयालु है, कृष्ण से अधिक उनकी धाम दयालु है। जितना कृपा धाम रूप लीला और नाम करता है उतना कृष्ण भी नहीं करते। अरे स्वयं अपना नाम लेकर पत्थर पे लिखा और भेजा तो पत्थर डूब गया ना समुद्र में, राम जी के रूप में। लेकिन जब भक्त लोग उनका नाम लिखकर भेज रहे हैं तो वो तैर रहा है पानी में। ये भी नाम के महिमा भगवान ने स्वयं दिखाई है कि मुझसे भी अधिक शक्तिशाली मेरा नाम है। तो ये लीला भी उनका स्वरूप है, तो वो भी बड़े आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो आइए हम अभी राधा रानी के जन्मदिन के अवसर पर राजभोग आरती अभी आरंभ होने वाली है, उसी भाव से नम्र होकर, जिस भाव से ब्रह्मा विष्णु महेश पत्थर बन गए थे, उसी नम्र भाव से उनके दर्शन को ग्रहण करें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की, श्री गौरनिथाई की, श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की।
इसके शुश्रूषकों की जय। तो हमारा